हम सब खुदावंत के कलाम में से आयत बायत मताल करते हुए इर्सियों के खत में से इस बात पर गौर कर रहे हैं कि पालूस रसूल कहता है, ईमानदारों से, मुकद्दसीन से, जो यीशु मसीह के लोग हैं उनसे, कि कोई तुमको, कोई शख्स, कोई चीज, कोई रस्म, कोई बात, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसी तालीम, कोई तुमको बेफायदा बातों से क्या करे, धोखा ना दे। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि लूसीफर जो फरिश्ता था, जो खुदा के तख्त के सामने खड़ा रहता था, उसकी इबादत करता था, उसकी परस्तिश करता था, उसके लिए जंगे, उसके लिए बहुत से दूसरे काम करता था, खासकर वो फरिश्तों के दस्ते को यानी कि फरिश्तों की एक बड़ी जमायत को क्या करता था, उनकी रहनुमाई करता था, उनकी रहबरी, एक लीडर था। और उसने अपने उन धोखा देने वाली बातों से, अल्फाजों से क्या किया, एक तहाई, तीन तहाई फरिश्तों को, कितने, तीन तहाई फरिश्तों को जो खुदा के फरिश्ते थे, गुमराह करके अपनी तरफ मिला लिया। इसलिए कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। लूसीफर इतना चलाक, इतना समझदार फरिश्ता, जिसे सुबह का सितारा कहा गया है, बाइबल मुकद्दस में उसके बहुत से नाम, बहुत से लकब उसको दिए गए हैं, उसने तीन तहाई फरिश्तों को, मुकाशवा की किताब के मुताबिक तीन तहाई खुदा के फरिश्तों को अपने साथ मिला लिया अपनी झूठी बातों से, और वो उसके पीछे हो लिए, और आज तक वो उसके पीछे जान देने के लिए तैयार हैं। और उस जिंदा खुदा को जिसने उन्हें जिंदगी दी, जिसने उन्हें बनाया, उनको नाम दिए, उनको इख्तियार दिए, उनको कुव्वत दी, उस खुदा को उन तीन तहाई फरिश्तों ने लूसीफर के साथ मिलकर कहा, नहीं, हम तेरी इबादत नहीं करेंगे। लूसीफर सच्चा है, खुदा तू झूठा है। अबलीस इतना चलाक, इतना समझदार है कि वो हमको गुमराही करने, गुमराह करने के लिए शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है, किस तरह हमको फाड़ता है। इसलिए कोई आपको कोई मुझे बेफायदा बातों से धोखा ना दे। इसलिए आज हम सीखेंगे, कल हमने देखा था कि बेफायदा बातें कौन सी है, जब तुम खुदावन खुदा के हजूर कोई हदिया, शुक्रगुजारी, नजराना या जो कुछ भी पेश करते हो, तो उसे हलीमी के साथ पेश करो, ना कि डंका बजा के, जैसे फरीसियों से खुदा ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं, ये कायम नहीं रहेगा, तुम्हारा आसमान पर कोई अजर नहीं। इसलिए आए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि वो दिन आने वाला है जब यीशु मसीह तख्त अदालत पर बैठेगा और वो हमसे कहेगा, मुझे हिसाब दो। तो आए अपनी इस दौड़ को, इस मसीही सफर को देखें। आज हम देखेंगे करंथियों की कलीसिया के बारे में, करंथियों की कलीसिया बदकारी में, बुद्ध परस्ती में और उसके अलावा बहुत सी दूसरी कबाहतों में फंसी हुई थी। वो भी हमारे जैसे लोग ही थे, जैसे हम, हमारे क्या कहते हैं कि बहुत से बुद्ध थे, बहुत सी इंसानी रसूमात थी, वैसे करंथस की कलीसिया जो रोम का, यूनान का इलाका था, उसमें रहकर इर्तमस देवी की और दूसरे रोम के शहंशाह और बुद्धों की और यूनानी देवी देवताओं की क्या करते थे, इबादत करते थे। करंथस की कलीसिया में एक मंदिर पाया जाता था, उस मंदिर पर जब एफ्रोडाइटी, ये एक देवी थी, एफ्रोडाइटी एक देवी थी जिसके एक ही वक्त में कम से कम हजारों, 10,000 पुजारी थे, 10,000 पुजारी थे जो उसकी पूजा करते थे। इसका सोने का मंदिर बना हुआ था पहाड़ के ऊपर, तकरीबन 450 के 500 फुट के ऊपर। वहां पर लोग जाते थे, अगर किसी को भूख लगती थी तो वो वहां पर जाकर गोश्त खाता था, क्योंकि अफ्रोडाइटी जो देवी थी उसके बुतों के सामने क्या किया जाता था, बहुत सा गोश्त कुर्बान किया जाता था। तो इन लोगों को जो एक दफा में क्या थे, गुमराह थे, मुर्दा थे, खुदा से दूर थे, बुत प्रस्त थे, जब मसीह की खुशखबरी सुनाएगी तो उन्होंने मसीह को कबूल किया। मसीह को कबूल जब कर लिया तो उसके बाद वो पुरानी आदतें अभी भी उनको पीछे खींचती थी। दूसरे लफ्जों में बाइबल के तौर पर कहते हैं कि रूहानी जब वो बने तो जिस्मानी ख्वाहिशें उनको फिर वापस लेकर जाती थी कि अपने चाल चलन को करो। ठीक वैसे ही जैसे बियाबान में से बहुत से लोगों के मुंह में ये नारा था, हमें बेहतर है कि खुदा सु मूसा को छोड़, हमें बेहतर है कि मिस्र में भेज दे, वहां के हमें खरबूजे याद आते हैं, वहां के हमें वो मीठे पकवान याद आते हैं, वहां की मुर्गी हमें याद आती है। और याद रखे कि उनको जल्दी मुर्गी नहीं मिलती थी, बल्कि 350-300 साल तक वो गुलामी में रहे। वहां पर वो रोते हुए दुआ करते थे कि हम यहाँ पर लहसुन के साथ, गंडे के साथ रोटी खाते हैं, दुखों के साथ हम क्या करते हैं, वक्त गुजारते हैं। और वो बार बार कहते थे कि हमें मिस्र की रोटियां और सोटियां और दबके और वो तमाम लातें और तमाम गालियां पसंद है, बजाय के खुदा के हजूर से हमारी सही पहचान की बातें मैंने कि तुम मेरा प्यारा है। तो क्रंथस की कलीसिया को जब पालूस रसूल को खत मिला कि उसमें हरामकारी पाई जाती है, उसमें बुत प्रस्ती पाई जाती है, उसमें फरेब पाया जाता है, वो गलत तलीम का शिकार हो गए हैं, वो अर्फाडाइनी जो देवी थी उसकी रसूमात में फंस गए हैं जिनसे कोई फायदा नहीं, तो पालूस रसूल उनको लिखता है। आज हमें भी देखने की जरूरत है कि हम में भी बहुत से क्रंथस के तरीकों कार पर चलते हैं, बुतपरस्ती, बेहयाई, और इस कलोनी में हम देख सकते हैं कि ये बढ़ रही है और ये बढ़ेगी जब तक खुदा का खौफ लोग नहीं मानेंगे। और खुदा का खौफ बाहर से नहीं, अंदर से आएगा, और ये कब आएगा, जब लोग खुदा का खौफ मानेंगे। इसलिए हम आज देखेंगे पालूस रसूल ईमानदारों को क्या कहता है कि बेफायदा बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं। पहला करंथियों 9 बाप उसकी 24वीं आयत, और यहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि मैं के दौड़ में दौड़ना क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी ही हैं, मगर अनाम एक ही ले जाता है। वो सवाल करता है कि दौड़ में सब दौड़ते हैं, सब दौड़ते हैं, सबका मकसद ये है कि जीते, लेकिन अनाम एक ले जाता है। ये बहुत पसंदीदा खेल थी यूनानियों की कि वो दौड़ते थे। ओलंपिक की जो खेले होती हैं उनमें बहुत ज्यादा यूनानी लोग हैं जो यूनान से आते हैं, दौड़ में बहुत तेज हैं। तो उनकी वो रोजमर्रा की खेल को बयान करता है कि तुम जानते हो कि दौड़ में सभी दौड़ते हैं लेकिन अनाम एक ले जाता है। और आगे क्या कहता है, मगर अनाम एक ही ले जाता है, तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। हम इस जिंदगी की दौड़ में मसीही जिंदगी को वो बयान कर रहा है कि ऐसे दौड़े ताकि जीते। कौन कौन जीतना चाहता है, सभी, हम सब अपना हाथ खड़ा करेंगे और ये चाहिए भी, लेकिन जीतने के लिए दौड़ने की जरूरत है। दौड़ने से मुराद मसीही जिंदगी गुजारने की जरूरत है, उन असूलों पर जो खुदा यीशु मसीह ने दिए हैं कायम रहने की जरूरत है, उन बेफायदा बातों पर नहीं जिनसे कोई फायदा नहीं। बहुत सी हमने बेफायदा बातें अपनी मसीही जिंदगी में अपना ली हैं जिनसे कोई फायदा नहीं, ना पिछली नस्ल को हुआ है, ना मौजूदा को, ना आने वाली नस्ल को होगा। क्या कहता है, दूसरी बात, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। यूनानी लोग पहलवानी बहुत ज्यादा करते थे। ये जितनी भी रेसलिंग, ये जितने भी आप फिल्मों को देखते हैं, तो वहां पर यूनानी लोग तलवारबाजी, नेजाबाजी, तीर कमानी, पहलवानी जिसे कुश्ती कहते हैं, इन खेलों को बहुत ज्यादा खेलते थे। तो वो कहता है हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है, वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यूनानी लोग जब जीतते थे तो उनको फूलों का सेहरा मिलता था। फूलों का जो सेहरा होता था वो क्या होता था, उनके सर पर डाला जाता था कि वो जीता हुआ है, और वो सेहरा मुरझा जाता था। जैतून की डालियों का सेहरा बनाकर उनको पहना जाता था, अब तो सोने के ताज पहनाए जाते हैं। तो जैतून की डालियों का सेहरा बनाकर उनको बनाया जाता था, बनाकर पहनाया जाता था, और वो शाम तक मुरझा जाता था। लेकिन पालूस कहता है वो इस सेहरे के लिए करते हैं। तुम तमाम कलीसिया के ईमानदार, वो कहता है उस सेहरे के लिए करो जो मुरझाने का नहीं, जो मुरझाने का नहीं। ये अजर है लाल पाने वाले लोगों के लिए, ये सिला है, ये बदला है खुदा उन खुदा की तरफ से ईमानदारों के लिए, लेकिन उन्हीं के लिए अफसोस के साथ जो दौड़े हैं। दौड़ के बगैर कोई इनाम नहीं, कुश्ती के बगैर कोई सेहरा नहीं। बहुत से कहते हैं कुछ पहलवान, बहुत से कहते हैं बल्ला पहलवान, अब वो पहलवान ही रह गए हैं और उनके जो सेहरे हैं वो सब मुरझा गए हैं, उनको आसमान पर कोई दूसरा चेहरा नहीं। इसलिए हम भी नामी मसीही ना रहे, बल्कि हमारे नाम के साथ, जैसे बाइबल मुकद्दस कहती है, शाबाश गालिब आने वाले मेरे बेटे और बेटी। मसीही तो हैं, सवाल ये है अपनी रात करने अपने अपने आप से करने की, कि क्या मैं गालिब आऊंगा। हम बहुत दफा दुआ करते हैं, ये सादा सी बात है, हम दुआ करते हैं खुदा रोटी दे, खुदा रोटी देता है, पुकानी किसने है, हमने। खुदा हमें ये चीज चाहिए, मकान चाहिए, खुदा हमें वसाइल मुहैया करता है, उस पर काम हमें करने की जरूरत है। वैसे ही मसीही जिंदगी में खुदा का पाक रूह हमें दिया गया है, उसे इस्तेमाल हमने करना है। पाक रूह हमें कान से पकड़ कर ये नहीं कहेगा कि इधर चलो, नहीं, खुदा पाक रूह कहेगा। तो ये मुरझाने वाला सेहरा दुनियावी सेहरा है जिसके पीछे कोई फायदा नहीं। हम ईमानदारों को जिस सेहरे के लिए पालूस रसूल कहता है वो सेहरा क्या है, नाम मुरझाने वाला, कभी खत्म ना होने वाला सेहरा, ये अजर है ईमानदारों के लिए। और पालूस रसूल इसीलिए कहता है 26वीं आयत में, बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं। पालूस रसूल सलाह नहीं देता कि सिर्फ तुम दौड़ो और मैं पीछे बैठ कर देखता हूं, नहीं, वो कहता है बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं। और उसका मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके पीछे वजह क्या है, ताकि मैं भी वो सेहरा हासिल करूं जो मुरझाने वाला नहीं। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं, बेठिकाना बगैर मकसद के, बगैर फायदे के, कह सकते हैं बगैर मंजिल के। आज बहुत से मसीहियों पर ये अफसोस से कहना पड़ता है, वो सब कुछ करते हैं लेकिन उनके दिलों में ये उम्मीद ही नहीं कि जब वो यीशु मसीह के, जब वो मरेंगे उनको हमेशा की जिंदगी मिलेगी या नहीं। कोई और बात में तो मैं किसी के साथ क्या करता हूं कि बातचीत में कह सकता हूं कि ये ऐसे हो सकती है, हमेशा की जिंदगी अटल है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। और जिस दिन कोई यीशु पर ईमान लाता है उसी दिन वो किताबे हयात में उसका नाम लिखा जाता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। आज बहुत से मसीहियों को इस बात पर शक है कि शायद शायद जब मैं आसमान के दरवाजे पर जाऊं और पतरस मुझसे पूछे कि मियाँ आपने आप यहां पर कैसे आए हैं, आपको किससे मिलना है, आप ईमान का इकरार सुनाएं, ये सब इंसानी सोचें। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम मरते हैं हमारे फरिश्ते हमारे लिए जो खुदा ने फरिश्ता मुकर्रर किया है वो हमारी रूह को खुदा की हजूरी में लेके जाता है, ठीक उस गरीब लाजर की तरह। और वो मुआ दफन हुआ और फरिश्ते उसकी रूह को इब्राहिम की गोद में ले गए। अब इब्राहिम की गोद जमीन के नीचे नहीं बल्कि आसमान पर है। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत दफा मसीही ईमानदार दौड़ते हैं बेठिकाना, बेफायदा बातों में हम ज्यादा यकीन करते हैं बजाय खुदा यीशु मसीह के। इसलिए जब आसमान पर जब कोई मरता है तो कोई भी, अगर आपने कहीं से सुना है कि जी आपको पालूस रसूल मिलेगा, आपको वो मिलेगा, ये मिलेगा, और कहेगा कि जी आओ जी मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा फिर आपको अंदर जाने दूंगा, ये सब इंसानी सोचे हैं, सच नहीं बामुताबिक पाए हैं पत्र। जब हम मरेंगे सीधे खुदावन की हजूरी में, इस वतन से, अपने वतन से जहां पर जला वतन है खुदा की हजूरी में रूबरू होंगे। इसलिए वो कहता है 26वीं आयत में, बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं यानी बेठिकाना नहीं। दौड़ने वाला क्या करता है, उसके सामने निशान है कि मैं इस निशान की तरफ, ये मेरा मकसद है। हमारा निशान क्या है, सलीब से ताज तक हमारा सफर है, ना कि हमें सलीब पर शुरू किया है और यहां पर ही बैठे रहे। यीशु मसीह ने कहा है कि अपना सफर, हमारा मसीही जिंदगी का सफर सलीब से शुरू होता है, यानी खुदा यीशु पर ईमान लाए और फिर उस अपनी जलाल के लिए। बेठिकाना नहीं दौड़ना, बेफायदा नहीं दौड़ना। और आगे कहता है मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उनकी मानद नहीं जो हवा को मुक्का मुक्के जो हवा को मारता है। अगर पहलवान अकेला ही लड़ता रहे तो वो रियाज तो होगा लेकिन वो उसमें जीतेगा कुछ भी नहीं। पालूस रसूल भी कहता है कि मैं हवा में मुक्के नहीं मारता, हाँ मैं चैंपियन बन गया, और मैंने मैदान जीत लिया, नहीं। मसीही जिंदगी में, ये रूहानी जंग में वो कहता है कि मैं अपने मकसद को जानता हूं, अपने निशान को जानता हूं और सच को जानता हूं कि किस तरह दौड़ना है। हवा में मुक्के नहीं मारने, बेठिकाना नहीं दौड़ना। अगर आज आप और मैं अपनी जिंदगी में देखें कोई ऐसी बात है बेठिकाना दौड़ रहे हैं तो हमें अपने रेफरी यीशु मसीह, अपने कामल करने वाले बानी यीशु मसीह की तरफ देखने की जरूरत है। मेरे साथ एक आयत देखें, अभी अभी खुदा के पाक रूह ने मेरे जहन में डाली, अब्रानियों 12 बाब, अब्रानियों 12 बाब, अब्रानियों 12 बाब उसकी पहली आयत। खुदा का पाक रूह बहुत जबरदस्त कुवत है हम सबके लिए, हमारी याद में वो अपने खुदा के कलाम को भेजता है, जैसे अभी अभी उसने मेरे जहन में ये बात डाली। अब्रानियों 12 बाब जब उसकी पहली आयत को देखते हैं तो वहां पर देखा है, पस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो आसानी से उलझा देता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। हर तरह की उस उलझन को दूर करें और सब्र के साथ दौड़ें। दुनियावी तौर पर जब कोई दौड़ना चाहता है तो वो सबसे पहले जायजा लेता है कि अगर मैं दौड़ूंगा तो मेरे जिस्म पर हद से ज्यादा चर्बी तो नहीं, मेरा सांस रुक तो नहीं जाता, मेरे दिल की धड़कन बढ़ तो नहीं जाती, और उसके लिए वो रियाज करता है, ऊंचे नीचे रास्तों पर दौड़ता है। जिन पादरी साहब थे जो मेरे उस्ताद हैं, जिनसे मैं सीखता हूँ दुनियावी उस्ताद, क्योंकि हमारा अलाही उस्ताद यसु मसीह है, लेकिन यसु मसीह इंसानों को इस्तेमाल करता है अपने शिगिर्द बनाने के लिए। उसके अब्बू आज से लेकर तकरीबन 1900 पता नहीं कितने साल से, सात दफा पास्टर जीन का अबू पूरी दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन बना है दौड़ में, और वो जीता जागता मौजजा है। वो जब हॉस्टल में था और हॉस्टल को आग लग गई और वो जल गया और उसकी सिर्फ हड्डियां बची थी टांगों की, डॉक्टरों ने कहा कि काट दी जाएंगी, ये कभी भी बच नहीं सकता। तो उस बच्चे ने अपने बेड पे ये दुआ की थी कि खुदा खुदा तूने अपने कलाम में कहा कि तू हर तरह की चीज को इस्तेमाल कर सकता है, अगर वाकया ही तू सच्चा है तो मुझे इस्तेमाल कर। उस हड्डियों पर गोश आया और वो दौड़ा, डॉक्टर कहते थे कि ये कभी भी दौड़ नहीं सकता। 7 साल लगातार अमरीका में वो वर्ल्ड चैंपियन बना। इसलिए हमारे इर्द गिर्द ईमानदारों को देखें, सबर से दौड़े, पालूस को देखें वो कैसे दौड़ता रहा, ताकि हम उन बातों को, उन रस्मों को जो बेफायदा है, बेठिकाना ना दौड़े, हवा में मुक्के ना मारें। हवा में मुक्के आज बहुत से मसीही हवा में मुक्के मारते हैं, लड़ते हैं, बेफायदा, बेठिकाना। आज छोटे छोटे बच्चे अपने आप को बिशप कहते हैं, जिनको खुद बाइबल के नाम का पता नहीं कि बाइबल का मतलब क्या है, खुदा का मतलब क्या है। वो अपने आप को झूठ की दुनिया में क्या कहते हैं, हम बिशप हैं, बिशप की तख्ती लगा के, जैसे कोई कहता है मैं जेटली हूं, मैं ये हूं वो हूं, लड़ते हैं, मैं बिशप हूं, मैं फलाम चर्च का पादरी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बेठिकाना बेफायदा दौड़ते हैं। उनका कोई इज्जत नहीं। पालूस रसूल कहता है वो गुनाह जो इंसानी आसानी से हमें उलझा लेते हैं उनसे खबरदार रहो और सब्र से दौड़ते रहो, वो दौड़ जो हमें दर पेश है। हाँ जी, पीछे चलेंगे, पहला करंथियों 9वां बाब उसकी 27वीं आयत पर खत्म करेंगे। इस हिस्सा में हम महीनों सीख सकते हैं, इसलिए बेठिकाना बेमतलब हवा में मुक्के ना मारें। कल को मैं सिखाने वाला हूं खुदा के कलाम में से के, कल को देखेंगे वक्त कम है। पालूस रसूल कहता है बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करके आप नामकबूल ठहरो। सादा तौर पर वक्त कम है, पालूस कहता है कि मैं अपने आप को, अपने जिस्म को जो ख्वाहिशों से भरा हुआ है, कब्जा कंट्रोल में रखता हूं। वैसे ही जैसे रासबाज दूध के बारे में कहा गया था कि वो बेबी जमाने में रहते हुए हर रोज अपने दिल को शिकंजे में रखता था, हम भी इस बेदीन जमाने में रहते हुए खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देंगे तो बरकत भी पाएंगे, हमेशा की जिंदगी तो मिल चुकी है, उसके साथ 100 गुना फल पाएंगे अगर हम बेठिकाना नहीं दौड़ेंगे, अगर हम हवा में मुक्के नहीं मारेंगे बल्कि सही जगह पर। हाल ही में किसी ने ये तजर्बा किया है कि वो 3 इंच से अगर किसी के दिल पर मुक्का मारे तो वो ठीक बंदा 15 घंटे में मर जाएगा बगैर किसी सबूत के, कि इसको क्या हुआ। इतनी ताकत उस बंदे ने अपने हाथ में पेश कर ली है तैयार कि 3 इंच से वो बंदे को मारता है और बंदा गिरता है और 3-15 घंटों में बंदा मर जाता है। हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है सुरहानी जंग के लिए। ये जंग इंसानों के साथ नहीं, ये ना हो कि घर जाके अपनी बीवी को कूटना शुरू कर दो। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। इस हवाले को लेकर आपको याद, क्या मुझे 3 मिनट दे सकते हैं और ज्यादा? बाद में गुस्सा तो नहीं होंगे कि बादशाह साहब ने 3 मिनट ज्यादा ले लिए? आपको एक मजेदार कहानी, सच्ची कहानी, झूठ नहीं है। इसी आयत को पादरी साहब कलाम कानून सुनाकर खत्म हुए और कुछ इस तरह हुआ कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ और पादरी साहब अपनी बीवी को डंडों के साथ कूट रहे हैं। कलीसिया में से कोई आ गया और उसने कहा कि पादरी साहब आप क्या कर रहे हैं? भाई मैं अपने बदन को काबू में रख रहा, क्या आपको नहीं पता? पालूस कहता है कि मैं अपने बदन को क्या करता हूँ, मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। ऐसे बहुत से शख्स आपको मिलेंगे जो खुदा के कलाम के मतलब को बदलेंगे। अपनी उस क्या कहते हैं कि संगदिली पर, उस बेअमली पर पर्दा डालने के लिए उसने दवादा हवाला निकाला और कहा कि मैं अपने बदन को मारता कूटता हूं ताकि उसे कब्जा में कंट्रोल में रखूं। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप जाके अपनी बीवी को मारना कूटना शुरू कर दे और कहें कि हाँ पादरी साहब ने सिखाया था कि यसु मसीह में आप दोनों एक बदन है, इसलिए मैं अपनी बीवी को इजाजत है कि उसे मार सकता हूँ, नमक ज्यादा पड़ गया ले तड़ा तड़ा। इसका हरगिज मतलब नहीं। पालूस कहता है कि मैं अपनी ख्वाहिशों को, अपने बदन को कब्जा कंट्रोल में रखता हूँ, मारता कूटता हूँ ताकि दूसरों में मनादी करके खुद नामकबूल ना ठहरूं। और यही मेरी दुआ है आपके लिए, आपके लिए, कि जब मैं यीशु मसीह की हजूरी में खड़ा हूं तो जो भेड़े उसने मेरे खेता में मेरे लिए जमा की है कि बेटा ये तेरी हैं, इनको तू सिखा। आने वाले दिनों में हम सीखेंगे कि जैसे चरवाहा है उसकी भेड़े हैं, यीशु मसीह उसका साहब मुझसे लेगा। इसलिए जब हम इस पर गौर करेंगे कि कौन कौन सी भेड़ अपने आप को समझती है कि खुदा ने आपको किस गल्ला में जमा किया है कि उसकी सच्चाई को जाने और उस पर अमल करें, आए हम दुआ करें।